ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाहि कश्चित् प्रियास्त्रीणाम् अञ्जसा स्वाशिषात्मनाम् पतिं पुत्रं भ्रातरं वा ध्यन्ति अर्थे धात्यन्ति च। नाहि कश्चित् प्रियस्त्रीणाम् अञ्जसा स्वाशिषात्मनाम् पतिं पुत्रं भ्रातरं वा ध्यन्ति अर्थे धात्यन्ति च। नाहि कश्चित् प्रियस्त्रीणाम् अञ्जसा स्वाशिषात्मनाम् पतिं पुत्रं भ्रातरं वा धयन्ति अर्थे धात्यन्ति च। नहीं ही निश्चय ही कश्चित् कोई प्रिया प्रिय स्त्रीणाम् स्त्रियों का अंजसा वास्तव में स्व आशिषा अपने स्वार्थ के लिए आत्मनाम सर्वाधिक प्रिय पतिम पति को पुत्रम पुत्र को भ्रातरम भाई को वा अथवा ध्यन्ति मार डालती है अर्थे अपने स्वार्थ के लिए धातयन्ति वध करवाती है च भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्त्रियां मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं मानो वे उनके परम प्रिय हों। यहां तक ठीक है किंतु वास्तव में उनका कोई प्रिय नहीं होता। स्त्रियों को परम साधु स्वभाव का माना जाता है किंतु अपने स्वार्थ के लिए वे अपने पति पुत्र या भाई की भी हत्या कर सकती हैं या अन्यों से करवा सकती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की कश्यप मुनि ने स्त्रियों के स्वभाव का अच्छा अध्ययन किया है। स्वभाव से ही स्त्रियां स्वार्थी होती हैं अतः सभी प्रकार से उनकी रक्षा की जानी चाहिए जिससे उनका यह स्वभाव प्रकट ना हो। स्त्रियों को मनुष्य द्वारा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। बचपन से स्त्री की सुरक्षा उसके पिता द्वारा युवा अवस्था में उसके पति द्वारा और वृद्धावस्था में उसके पुत्र द्वारा होनी चाहिए। यह मनु का आदेश है। उनका कथन है कि स्त्री को किसी भी अवस्था में स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। स्त्रियों की रक्षा इसलिए की जाती है या इसलिए की जानी चाहिए जिससे उनकी स्वार्थपरता प्रकट न हो पावे। इस काल में भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें स्त्रियों ने जीवन बीमा का लाभ उठाने के लिए अपने पतियों की हत्या की है। यह स्त्रियों की आलोचना नहीं अपितु उनके स्वभाव का अध्ययन है। देहात्म बुद्धि के द्वारा ही स्त्री की आलोचना की ऐसी सहज वृत्तियों का प्राकट्य होता है। जब स्त्री या पुरुष को आध्यात्मिक चेतना प्राप्त हो जाती है तो उनकी देहात्म बुद्धि जाती रहती है। हमें समस्त स्त्रियों को आध्यात्मिक इकाई अहम ब्रह्मास्मि के रूप में ही देखना चाहिए जिनका एकमात्र धर्म श्री कृष्ण को तुष्ट करना है। तब हम पर इस शरीर को धारण करने से उत्पन्न होने वाले गुणों का प्रभाव नहीं होगा। श्री कृष्ण भावना आंदोलन इतना लाभप्रद है कि यह भौतिक प्रकृति के कलमश को जो देह धारण करने से उत्पन्न होता है दूर कर सकता है। इसलिए प्रारंभ में ही भगवत गीता का यह उपदेश है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष जीव को यह समझ लेना चाहिए कि वह शरीर नहीं वरन आत्मा है। प्रत्येक मनुष्य को शरीर नहीं वरन आत्मा के कार्यकलापों में रुचि रखनी चाहिए। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जब तक देहात्म बुद्धि से प्रेरित रहेगा तो सदा ही पथ भ्रष्ट होने की संभावना बनी रहती है। आत्मा को कभी कभी पुरुष कहा जाता है, क्योंकि चाहे कोई स्त्री वेश में हो या पुरुष वेश में, वह इस भौतिक जगत का में सुख उठाना चाहता है, और जिसमें सुख उपभोग की वृत्ति होती है वह पुरुष कहलाता है। चाहे पुरुष हो या स्त्री, वह अन्यों की सेवा करने में रुचि नहीं रखता। प्रत्येक प्राणी अपने इंद्रियों को ही तुष्ट करने में रुचि रखता है, किंतु श्रीकृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति प्रत्येक मनुष्य या स्त्री को उत्तम कोटि की शिक्षा प्रदान करती है। पुरुष को उत्तम कोटि का कृष्ण भक्त बनने और स्त्री को पति की परम अनुयायी बनने का प्रशिक्षण मिलना चाहिए, इससे दोनों का जीवन सुखी बनेगा। हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में, और ये जो प्रसंग चल रहा है राजा इंद्र का वध करने के लिए तिथि का व्रत, और उनका व्रत रखने का कारण क्योंकि इंद्र की वजह से उनके दो पुत्र मारे गए, कौन कौन, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष, जो कि बड़े असुर थे, लेकिन असुर थे तो भी मां को प्रिय थी। माता का हृदय ऐसे ही होता है, चाहे बेटा कैसा भी हो लेकिन है तो अपना ही। तो ये बहुत सुंदर एक माता का व्यवहार पता चलता है। और बताते हैं जब इन्होंने प्रकट होना था, माता के गर्भ में कई वर्षों तक रहे ये, है ना, और माता भी नहीं चाहती थी, कि पता था कि इस तरह के जब सुनेंगे तो चाहती थी नहीं रहें, अंदर ही रहें काफी समय तक। लेकिन जब बाहर आए तो अचानक जो है, जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के या और किसी विष्णु अवतार के जो है माता के गर्भ में रहने से, है ना, एक सुंदर लक्षण पैदा होते हैं समाज में, है ना, उसी तरह जब ये गर्भ में थे तो बड़े भीषण जो है लक्षण प्रकट होने लगे। और जब ये प्रकट हुए दोनों लोग, तो उसके बाद इन्होंने अपना काम शुरू किया भगवान की योजनाओं के अनुसार। और फिर जब ऐसे असुर होते हैं तो वो लोग समाज में किसी को सही ढंग से नहीं रहने देते हैं, और फिर इस प्रकार के असुरों का प्रकोप पड़ता है इंद्र जैसे व्यक्ति पर। तो इंद्र ने जो है प्रार्थना करी भगवान से, और फिर भगवान आए और इन असुरों का वध किया। तो अब दिति जो है, जो उनकी मां है, वो बड़ी परेशान है, क्योंकि उनके दोनों पुत्रों का वध इंद्र के कारण हुआ है, इसलिए वो उनसे बदला लेना चाहती है। और इस प्रसंग में जो हम पढ़ रहे हैं, अब इन पिछले दो तीन श्लोकों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं ये समझने का, जिसमें कि रूपा जी भी इस बात को लिख रहे हैं कि 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि है, और उस मनुष्य योनि का ही एक भाग जिसे बोल सकते हैं रूप अलग है। जैसे 4 लाख प्रकार के मनुष्य योनियां बताई गई हैं अलग अलग मेंटेलिटी और चेतना कॉन्शियसनेस के हिसाब से, उसमें एक स्त्री नाम का शरीर भी है, या एक इस प्रकार का इक्विपमेंट भी है, मशीन जिसे बोल सकते हैं, जिसके बारे में चर्चा हो रही है, और उसकी पर्टिकुलर नेचर या उसकी टेंडेंसी या उसके सिम्टम्स लक्षण के बारे में चर्चा हो रही है। तो इन दो तीन श्लोकों में जो है बताया जा रहा है कि किस प्रकार जो मनुष्य योनि में ही ये स्त्री की योनि में जो जीवात्माएं होती हैं, तो जिस योनि में वह हैं या जिस उस मशीनरी के हम लोग इक्विपमेंट बोल सकते हैं उसको, उसके कुछ सिम्टम्स बताए जा रहे हैं कि कैसे काम करता है ये मशीन, उसके अंदर उसकी क्या नेचर होती है, और उसको ठीक चलाने के लिए क्या करना चाहिए, और वो जब गलत करता है तो क्या क्या गलत कर सकता है। जिस प्रकार एक कंपनी में कोई व्यक्ति नाना प्रकार के उत्पादन का जो है प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं वो तारों का, डीसी एसी तार होती है ना, अगर उसके साथ जोड़ दे तो ब्लास्ट करता है वो, है ना, तो उनको पूरा ज्ञान होता है इसके विषय में। तो उसी प्रकार मनुष्य योनि में इस समय पिछले 2-3 श्लोकों से विशेषकर स्त्री की नेचर की बात की जा रही है। तो अगर इस नेचर को सुनते हुए किसी को खुशी हो रही है और किसी को गम हो रहा है, तो उसका कारण क्या है, देहात्म बुद्धि। हम लोग जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं या श्रीमद् भागवतम जिस चीजों पे चर्चा कर रहा है, उसका उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को उसकी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठाया जाए, जब तक जीवात्मा इस शरीर को ग्रहण करने के बाद अपने को मनुष्य पुरुष स्त्री देवता मानेगा तब तक वो परेशान दुखी और डिस्टर्ब रहेगा। यहां तक कि बड़े बड़े देवतागण भी भगवान के पास क्यों भाग के जाते हैं, क्यों इतने इनको अंदर भी समस्या रहती है, क्योंकि वो भी देहात्म बुद्धि पर कई बार काम करते हैं। इसलिए उनको अपनी पोस्ट का डर होता है, इसलिए उनको हारे जाने का डर होता है, गम होता है, और इसीलिए उनके अंदर भी ईर्ष्या द्वेष होता है। हो सकता है वो देवता तक के स्तर पर हों, लेकिन क्योंकि देहात्म बुद्धि के स्तर पर हैं इसलिए डर बना रहता है, इनसिक्योरिटी, पूजा लाभ इन सब चीजों से। इसी तरह जब व्यक्ति मनुष्य देह में होता है तो उसको अगर वो अपने को मनुष्य मानता है, अगर वो अपने आप को मनुष्य मानने का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मानता है, स्त्री पुरुष या वृद्ध मानता है, तो वो भी एक देहात्म बुद्धि का अंग है। और फिर इस प्रकार की देहात्म बुद्धि में जो भी व्यक्ति है जिसकी चेतना देहात्म बुद्धि वाली है, वो अपने को शरीर ही मानता है, तो फिर ऐसी बातें जो श्रीमद् भागवतम में इस समय आ रही हैं तो उसको बहुत ज्यादा चुभेंगी हृदय में। जब इसकी चर्चा होगी, विशेषकर जब स्त्रियों के विषय में चर्चा होगी, तो कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए लेक्चर के चलते चलते बीच में आ जाए और वो कुछ सुन ले तात्पर्य को कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए स्त्रियां मनुष्यों के साथ ऐसा व्यवहार करती हैं मानो वे उनके परम प्रिय हों, अच्छा लगेगा उनको। फिर किंतु वास्तव में उनका कोई प्रिय नहीं होता, स्त्रियों को परम साधु स्वभाव का माना जाता है, किंतु अपने स्वार्थ के लिए वे अपने पति पुत्र या भाई की भी हत्या करवा सकती है, कर सकती हैं या करवा सकती हैं। अब कितने सेंटेंस सुनकर तो कोई नंदिनी आना बंद कर देगा नहीं, और जो सुनेगा तो विशेषकर बड़ा एंटी हो जाएगा, कहेगा ये तो क्या चलता है, क्या चलता है इस कॉन में आजकल, ऐसे क्यों बोलते हैं लोग, है ना। और पुरुष जो बेचारे इस हादसे के कहीं शिकार हुए या होने वाले हैं या हुए थे या उनका कोई रिलेटिव फंसा बेचारा, तो वो कह बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भागवतम को सर पे रखना चाहिए, बिल्कुल क्या बात कर, क्या शॉट मारा है ना शुकदेव गोस्वामी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में एक उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं कि हां देखा गया है कई स्त्रियों ने धन के लाभ में जीवन बीमा की राशि को हड़पने के लिए कितने साल की करवाई है, 20 साल की कराई है, अच्छा और करा लो दो चार, एक एक करोड़ की और करवा लो, अच्छा करवा ली ठीक है, और दो महीने बाद दिखे नहीं रहे भाई सब, कहां है जी, पता नहीं कहां है, लापता हो गए घूम गए, समझे, कत्ल करवा लिया और वो सारा मामला हड़प लिया। तो ये सब देखा जाता है, प्रभुपाद जी रेफरेंस दे रहे हैं कि हां हुआ है ऐसा, और अगर खुद नहीं करना चाहते क्योंकि पकड़े जाते हैं, है ना, अगर खुद भी पकड़े गए पता चला यहां मरवाया और खुद जेल में, तो कौन खाएगा उस पैसे को, तो फिर बाहर वाले से करवा लेंगे, उनको सुपारी देते हैं कि आप ये काम करना है ऐसे, है ना, ऐसा भी करवाया जाता है। तो ये सारा का सारा कार्यक्रम जो है, ये जंजाल जो है, ये केवल देहात्म चेतना की वजह से है। तो इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि ओहो हो ये तो हमारे बारे में बड़ा गलत बोला गया है, और किसी खुशी हो रही है ठीक है हम तो बचे हुए, हमारे बारे में थोड़ी बोला है तो उनके बारे में बोला गया, तो ये दोनों ही चेतना क्या है, देहात्म चेतना है। और हमारे ग्रंथ साफ साफ व्यक्ति को बताते हैं कि किस प्रकार हमको इस देहात्म चेतना से उठना है। अर्जुन युद्ध से पहले डर रहा था, कांप रहा था, मुंह सूख रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान देना शुरू किया तो कहां से शुरू किया, आत्मा के ज्ञान से। अरे भैया तुम क्यों इतना ये सोच रहे हो कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे ये हैं और वो हैं, नहीं नहीं, सबसे पहले भगवान ने उसको शरीर से अलग किया, भैया ये ज्ञान है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और जैसे ही व्यक्ति इस ज्ञान को समझने का प्रयास करता है तो तुरंत समझ जाता है कि हां जब मैं ये शरीर ही नहीं हूं तो फिर मैं इस शरीर की हो रही निंदा या हो रही प्रेज से मैं क्यों आसक्त हूं, या मैं अपने मन में क्यों इसके उसको डालूं। तो यहां पर इस पर्टिकुलर श्लोक में फिर उस एक शरीर की वृत्तियों के बारे में चर्चा हो रही है जो लोगों को मिलता है। ऐसा नहीं है कि इस श्लोक में अगर यह बात आ गई तो इसका मतलब यह है कि केवल इस पर्टिकुलर मशीनरी की बात हो रही है कि यह ही ऐसा शरीर है, इसके अलावा बाकी सारे अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। भगवत गीता में श्लोक आता है वैश्य शूद्र स्त्री नाम सब बोला गया, तो उसमें बोला जाता है कि चलो स्त्री का नाम आ गया। कई बार लोग हमारे पास प्रश्न करने आते हैं, प्रभु जी ऐसा क्यों है कि हमेशा स्त्रियों को ऐसा बोला जाता है, ऐसा क्यों है कि हमेशा पुरुषों को आगे करा जाता है। आज समाज में हर जगह जहां भी न्यूज़पेपर उठाओ है ना, हमें आजादी चाहिए है ना, हम रात को नहीं घूम सकते क्या है ना, हम लोग पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए, इस प्रकार की बातें हो रही। आपने सुनी? हाँ, और इसको प्रयास किया जा रहा करने का और बहुत तेजी से, लेकिन हर चीज की अगर हम सुविधा चाहते हैं तो जैसे कि हम जानते हैं आज हम लोगों को वैज्ञानिकों ने इतने सारे इक्विपमेंट्स दिए हैं, इतने सारे हम लोगों को सुविधाएं दी हैं समय बचाने के लिए, लेकिन उन सब सुविधाओं के साथ उन सब सुविधाओं के नुकसान भी हम जानते हैं कि क्या हो रहे हैं। उसी प्रकार अगर कुछ भी सुविधा हम चाहते हैं तो उसके नुकसान से डरिए ना। फिर पाश्चात्य देशों में सबसे पहले स्वतंत्रता की बात उठी, लोग स्वतंत्र हुए, अपने को स्वतंत्र समझा, और इस स्वतंत्रता का मतलब था कि हम कुछ भी करें जहां भी करें कोई हमें रोके ना। उस स्वतंत्रता का फिर दुरुपयोग हुआ, उन सुविधाओं का दुरुपयोग हुआ, और फिर वहां पर जो उसकी वजह से नुकसान हुए वहां के जब हम आंकड़े पढ़ते हैं तो पता चलता है कि सबसे अधिक वहीं पर इलिसिट रिलेशंस हैं। ऐसे बच्चों की संख्या वहां पर सबसे ज्यादा है जिन्हें अपने पिता के विषय में नहीं मालूम, और इसके अलावा उन्हीं स्त्रियों इत्यादियों में सबसे अधिक गर्भपात की संख्या बढ़ती है, और इतना ही नहीं नशे इत्यादि की भी लत पड़ती है। तो एक ऐसा समाज जिस समाज में सब लोग अपने मन की ही कर रहे हों तो वो समाज आगे नहीं बढ़ सकता। एक व्यक्ति ने कहा बंधन क्योंकि इस संसार में किसी को पसंद नहीं है, इसलिए वो बंधन के बड़े खिलाफ थे। स्त्री मुक्ति आंदोलन, बच्चों को नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मन में आए करो। तो अपने एक मित्र से कहा कि देखो मेरे को बिल्कुल बंधन पसंद नहीं है, बच्चों को जो मन में आए करने देना चाहिए। इसलिए स्कूली शिक्षा में भी इत्यादि में यही बोलते हैं कि जब मन में विचार आए तो उसको पूरा कर लेना चाहिए, बंधन में नहीं रहना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए अपने आप को। क्या फायदा रोक कर, इससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। इसलिए आए दिन कोई ना कोई विशेषज्ञ या कोई ना कोई डॉक्टर अपनी स्टेटमेंट्स अखबारों में या दूसरी मैगजीन में देता रहता है, हमें ऐसा करना चाहिए और ऐसा ये सब ये फायदा होगा, इसके ये फायदे हैं। और बाद में जब इस तरह की स्टेटमेंट्स के बारे में लोग करते हैं या बिना उनके बोले करते हैं तो उसके नुकसान भी बाद में पता चलते हैं, और फिर बाद में दूसरी स्टेटमेंट आती है कोई दूसरा डॉक्टर बोलता है ये करने से ये नुकसान है। तो उसने कहा कि मैं तो ये चाहता हूं कि बच्चों को जो है पूरा खुला छोड़ दिया जाए, कोई बंधन नहीं होना चाहिए। तो कहते देखो ये एक लंबा टॉपिक है, लेट्स यहां सड़क पे खड़े के बात नहीं करते कि पार्क में चलते हैं। हाँ कहते ठीक है पार्क में चलते हैं। तो दोनों पार्क में गए बात करने के लिए। अब वो पार्क ऐसा था कि पूछो मत। तो जैसे ही वहां पर आया देखा बियावन, भीड़, जंगल, झाड़ियां है ना, सब गंद। कहते क्या है कि पार्क है ये, झाड़ियां देखो कोई है नहीं देखने वाला क्या। कहता हमें यही समझाना चाह रहा था, ये वो बच्चे हैं जो इंडिपेंडेंटली बड़े हुए हैं। तो उसको समझ आ गया क्या मतलब कि जब हम लोग स्वतंत्रता से जीना चाहते हैं, शास्त्रों को नहीं मानना चाहते, तो हमारा जो ग्रोथ होगा वो इस प्रकार का होगा कि जो एक जंगल लगेगा या एक झाड़ी लगेगी, और दूसरी तरफ एक गार्डन है जो सुंदर ट्रिम्ड वेल फर्निश्ड फ्लावर्स और सुंदर सुगंधी गार्डन। उसने बोला ये वो हैं जो स्कूल गए हैं, जो ट्रेंड हुए प्रॉपरली। तो समझ आ गया, मतलब समाज को आवश्यकता है लीडर्स की, समाज को आवश्यकता है ट्रेन करने की। मन माफिक चलने से क्या होगा, केवल नुकसान होगा। तो इसी तरह जब हम लोग देहात्म बुद्धि में कार्य करते हैं तो इस प्रकार के भेद हम लोगों को, उस भेद को भी डील करना पड़ता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कितनी ही जगहों पर इन सब विषयों की चर्चा आती है। जब हम बता रहे थे कि स्त्रियां बोलती हैं कि इस तरह की बातें क्यों लिखी गई हैं, तो यह भी तो लिखा गया शूद्र इत्यादि, और ग्रंथों में लिखा गया है जन्मना जायते शूद्रा, है ना जी, कि जन्म से तो हर व्यक्ति शूद्र है, अब चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। और इसलिए उसको संस्कारात भवेत द्विजा, केवल संस्कारों से ही वह द्विज बनता है, और वेद पाठात भवेत विप्र, विप्र बनता है जब वो वेदों का अध्ययन करता है। और ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता वही ब्राह्मण के स्तर पर कार्य करता है। इसलिए इस पर्टिकुलर नेचर को समझते हुए सुनते हुए हम लोगों को किसी प्रकार का मन में शोक या हर्ष नहीं होना चाहिए, है ना। शोक उनको जिनको लगेगा कि मैं मेरी आत्मा जिस प्रकार के शरीर में है उस शरीर की चर्चा हो रही है ना, ये समझना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए, और बड़े सुंदर ढंग से महाराज ने भी इसको बहुत अच्छा क्लियर किया था कुछ दिन पहले प्रभुपाद जी के प्रपट्स के अकॉर्डिंगली। फिर शुरुआत में ही प्रभुपाद जी भी एक बड़ी सुंदर बात कर रहे हैं इस तात्पर्य में कि स्वभाव से ही स्त्रियां स्वार्थी होती हैं, जो शुरू में बता रहे हैं, अतः सभी प्रकार से उनकी रक्षा की जानी चाहिए। तो अब जिस इक्विपमेंट की हम बात कर रहे हैं यहां पर, उसके जो डूज और डोंट्स बता रहे हैं कि ये जो मशीन है, पर्टिकुलर मशीन जिसे स्त्री का शरीर कहते हैं, इसके ये नुकसान है और इसकी रखवाली कैसे की जा सकती है। तो बता रहे हैं कि हमेशा अगर तो इस इंस्ट्रूमेंट को बिना किसी केयर के छोड़ दिया गया, बिना किसी ट्रेनिंग के छोड़ दिया गया, तो ये सब घटनाएं होंगी जो उनसे हम पढ़ रहे हैं। और अगर से ठीक प्रकार से रक्षा की गई, इनको सिक्योरिटी दी गई, प्रॉपर एंगेजमेंट दी गई, तो फिर ये इक्विपमेंट ठीक ढंग से कार्य करेगा। यही बात कपिल मुनि और जब देहूति में हो रही है चर्चा, तो कपिल भगवान ने भी अपनी माता देहूति को बताया कि किस प्रकार जीवात्माएं देहांतरण करती हैं भगवान की योजनाओं के आधार पर और कर्मों के आधार पर। जो हम कथा पढ़ते हैं पुरंजन की, उस कथा में भी चर्चा आती है कि ये जो पर्टिकुलर शरीर है ये किस प्रकार के लोगों को प्राप्त होता है, किस तरह की चेतना बनाने पर इस तरह का शरीर प्राप्त होता है। तो जब पुरंजन का पता चला कि वो एक स्त्री से बहुत ज्यादा आसक्त था, और अंतिम समय में जब उसने शरीर का त्याग किया, तो पुरुष शरीर की जो उसके अंदर चेतना थी काम वासना की चेतना या स्त्री से आसक्ति की चेतना, तो उसको अगला जन्म एक स्त्री के रूप में लेना पड़ा। तो ये अगर देखा जाए तो जिस शरीर की बात करें पुरुष शरीर की, तो वहां से भगवान को प्राप्त करना या भक्ति करना थोड़ा फेवरेबल बनता है। ये ऐसा इक्विपमेंट है, ये शरीर एक ऐसा साधन है जहां से ज्यादा आसानी से किया जा सकता है भगवान का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो दूसरा इक्विपमेंट है, ये जो दूसरा साधन शरीर है, उससे नहीं किया जा सकता, ऐसा कहीं नहीं लिखा। उसमें हो सकता है कुछ उस पर्टिकुलर साधन शरीर में कुछ योग्यताएं कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जिसको पुरुष साधन शरीर प्राप्त हुआ है, वो उस देह में रहकर अगर भक्ति करता है, और अगर स्त्री अपने धर्म का पालन करते हुए अपने पति के साधना में सहयोग करती है, तो दोनों का फल बराबर है। तो थोड़ा सा दिमाग को खुला रखकर सोचना पड़ेगा इसमें कि किस प्रकार हम लोग देहात्म बुद्धि में न रहकर सुने। फिर जब उनको बताया कपिल देव जी ने कि अगर व्यक्ति को किसी तरह अज्ञानता में रहने के कारण और कामवश या किसी प्रकार की आसक्तियां अधिक हो गई किसी शरीर में, और उसको अगर फिर से दोबारा शरीर प्राप्त हो गया है, मान लीजिए जब स्त्री का प्राप्त हो गया है उसको, तो डरने की बात नहीं है। क्या रास्ता बता रहे हैं कि उनको यह चाहिए स्त्रियों को क्योंकि जैसे यहां बताया ना प्रभुपाद जी ने कि पुरुष को चाहिए कि वो स्त्री को हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करे, और स्त्री के साधन शरीर में भी ये चेतना बनी रहती है कि मुझे सिक्योरिटी, मुझे ये सब चाहिए। तो कपिल देव भगवान कह रहे हैं अपनी माता को कि स्त्री के शरीर में आने के बाद भी स्त्री को चाहिए कि वो अपनी मेंटालिटी इस तरह तैयार करे कि एक तो देहात्म बुद्धि से ऊपर उठे और ये सोचे कि मैंने पिछले कई जन्मों में इसी प्रकार की इच्छाएं करी हैं, इसलिए मैं हर बार शरीर बदल रहे हैं हम लोग, और अब मुझे जो है जो पति के रूप में, मकान के रूप में, बच्चों के रूप में जो सिक्योरिटी चाहिए, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मुझे इससे भी आसक्त नहीं होना कि मुझे सिक्योरिटी ही मिलती रहे, ऐसे ही सोचते रहे और चेतना यही बनी रहे, नहीं, उससे बाहर निकलकर हम लोग भगवान की भक्ति करें, इससे ऊपर उठकर भक्ति करें। इससे क्या होगा, ताकि वो स्त्री के शरीर से भी जब उसका त्याग करे, उस साधन शरीर का, तो वो मुक्त होकर भगवान के चरणों में व्यक्ति सेवा कर सके। और पुरुष साधन शरीर में रहकर अगर व्यक्ति को ये लगता है, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हर जीवात्मा पुरुष कहला रहा है यहां पर, वैसे तो सब प्रकृति है, लेकिन इस शरीर में व्यक्ति के अंदर लॉर्डिंग ओवर वाली नेचर रहती है, आई एम द लॉर्ड, पुरुष प्रधान समाज, कैसे हो सकता है कि कोई स्त्री मेरे आगे बोले, कैसे हो सकता है कि मेरे से आगे जाए, है ना, ऐसी नेचर बन जाती है उसमें। तो उसको उस प्रभुत्व जमाने वाली चेतना से हटाना है अपने को, बात समझ रहे हैं, दोनों शरीर में क्या कंडीशनिंग है, उसमें यह है कि मुझे अपने सिक्योरिटी वाली इनसिक्योरिटी जो फील करती है स्त्री शरीर में जो आत्मा, उसको उस चेतना से बाहर निकलना है, और जो पुरुष शरीर में है उस व्यक्ति को अपने प्रभुत्व जमाने वाली चेतना से बाहर निकलना है, आई एम द लॉर्ड। तो जब इस प्रकार की चेतनाओं से दोनों बाहर निकलेंगे तभी धाम जाएंगे, अदरवाइज बेशक हो सकता है किसी को बार बार पुरुष का शरीर भी मिल रहा हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुंती महारानी का हम लोग उदाहरण ले सकते हैं श्रीमद् भागवतम में, द्रौपदी का उदाहरण ले सकते हैं, और कितने इतने से माताएं हुई हैं जिन लोगों ने भगवान कृष्ण की अटूट भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में ये जो प्रसंग है और पर्टिकुलर जिस नेचर को बताया जा रहा है, तो यहां पर उन लोगों की आलोचना हो रही है, जैसे कि पूरे भागवतम में कहीं ना कहीं पुरुषों को या हर उस मनुष्य को गधा, गधे के समान, गोखर समान, जो व्यक्ति अज्ञानता में है, जो सोकल देशभक्त है, जिसे देश ही पूजनीय लगता है, है ना, या इस तरह की चीजें लगती है, पूरे भागवत में हर जगह उनकी पिटाई हो रही है, ठीक है। तो मैं रिकंसाइल कर रहा हूं, थोड़ा सा लोगों को यह नहीं लगना चाहिए कि हमारी हमारी बात हो रही है, उनकी बात नहीं होती है। तो हर जगह ऐसे ऐसे शब्द बोले गए हैं, अगर आप किसी ये दूसरे साधन शरीर के बारे में बोल गए होते तो यहां पर संख्या बहुत कम होती लोगों की, हम नहीं आएंगे मंदिर, ऐसे ऐसी बातें बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों शरीर ही का सदुपयोग किया जा सकता है और उसका दुरुपयोग भी किया जा सकता है, इन पर्टिकुलर साधन शरीरों की जो वृत्तियां हैं इन शरीरों में, अगर उसका हमको ज्ञान ना हो तो। और मनुष्य शरीर इन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब मनुष्य में केवल पुरुष नहीं आते, स्त्रियां भी आती हैं। तो जब मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है तो इसका मतलब क्या है, 84 लाख में सर्वश्रेष्ठ हैं हम। तीसरे ही स्कंद में बता रहे हैं कि जिस प्रकार हिलने डुलने वाली योनियां उन योनियों से श्रेष्ठ हैं जो हिलते डुलते नहीं हैं, पहाड़ और जमे हुए वृक्षों से अधिक हिलने जो हिलते हैं, और जिनके पास कुछ सेंस ऑर्गन्स जिनके डेवलप्ड हैं देखना सुनना, वो उनसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं जो हिलते डुलते हैं, और जिनके सारे अंग प्रत्यंग डेवलप्ड हैं ये उनसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, और उनसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं जिनके बहुत सारे पैर हैं, और फिर जिनके बहुत सारे पैर हैं उनसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं उनके जिनके चार पैर हैं, और इन चार पैर वालों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, जिनके दो पैर हैं, और इन दो पैर वालों में भी कौन श्रेष्ठ है, डेढ़ पैर वाले। अभी डेढ़ पैर किसके हैं, भगवान श्री कृष्ण डेड उसमें खड़े थे ना, एक बोरा नीचे और आधा आधा। तो इन दो पुरुषों, इन दो पैर वालों में भी बताते हैं वो, क्योंकि दो पैर वाले भी 7 अरब हैं संसार में, लेकिन इन दो पैर वालों में जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया है, जो धार्मिक प्रवृत्ति के, वो फिर बड़े कम हो जाते हैं, चतुर्वेदी हैं। इन चार वेदों का अध्ययन करने में जो व्यक्ति अध्ययन करने के बाद उसको जी भी रहा है, ऐसे और कम है, थोड़े और कम हो जाते हैं। यहां पर अभी स्त्रीलिंग पुलिंग की बात नहीं हो रही है, यहां पर सीधा बात करी जा रही है उनकी क्वालिटीज के हिसाब से। और फिर इनमें भी वो लोग जो ब्राह्मण हैं, इन चार वर्ण और आश्रमों में जो इस तरह है वो और ज्यादा श्रेष्ठ हैं। और उन ब्राह्मणों में भी जिसको ये लगता कि मैं ब्राह्मण हूं, वो नहीं, जो वैष्णव ब्राह्मण है वो सर्वश्रेष्ठ है। अब इन वैष्णव सर्वेष्ठ जो वैष्णव हैं, इसमें फिर पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वैष्णव हो चाहे वैष्णवी हो, क्या है, दोनों श्रेष्ठ है। तो ये हमारे बारे में चर्चा नहीं हो रही, ठीक है ना। तो ये तो इसलिए चर्चा हो रही है ताकि समाज में जो और लोग हैं, जो अभी एज पर हैं, बिल्कुल किनारे पर हैं, उनको बचाया जा सकता है। आप अगर धरती पे खड़े हैं और समुद्र की लहरें आपके पांव पे टकरा रही हैं, और कुछ लोग जो कॉर्नर में उछल कूद कर रहे हैं, तो उनको तो खींच के बाहर लाया जा सकता है। उनको लाना बड़ा मुश्किल है जो अंदर डुबकियां लगा रहे हैं और जो बचाओ बचाओ कह रहे हैं, है ना, ठीक है, उनको लाना बड़ा मुश्किल है। और अगर कोई व्यक्ति जो पूरी तरह से खुद नहीं बचा हुआ या जिसको तैरना नहीं आता, वो बचाने चला जाए तो उसको जफ्फी पालेगा, वो उसको भी ले जाएगा अंदर। तो जो एज पे खड़े हैं, या जिनका एज का मतलब है जो जिनके अंदर रजोगुण की कमी हो रही है और जो सात्विक वृत्ति के प्रति आकर्षित हैं, जो जिज्ञासु हैं, जो कहीं ना कहीं पूजा अर्चना के द्वारा भगवान से आकर्षित हैं, तो वो एज पे खड़े हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है बाहर, क्या हो रहा है, खींच खींच के लगे आ जाओ मंदिर में ले नचाओ उनको, है ना। तो ऐसे लोगों को बचाया जा सकता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवतम की कथाएं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो एज पे खड़े हैं उन्हीं का उद्धार होगा या वही अंदर आएंगे। कृष्ण भक्ति में भगवान कहते हैं, भक्ति माम भी जानती, भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी भी गुण में स्थित है तो भगवान की कृपा से, चाहे वो किसी भी गुण में स्थित हो, कितने ही जन्मों से स्थित हो, अगर भगवान उस पर अपनी कृपा दृष्टि डाले तो उसका उद्धार कर सकते हैं। इसलिए सदैव, चाहे कोई हो, सो किसी को लगे कि मैं फर्श पे हूं, किसी को लगे मैं बीच में हूं, हर व्यक्ति को ही भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भगवान का कीर्तन, भगवान का गान करना चाहिए, तब जाके हम लोग अपने जीवन को सार्थक कर पाएंगे। इसके अलावा शास्त्रों में प्रभुपाद जी इनको जिस वजह से ये सब घटनाएं होती हैं उसका एक मेन कारण बताते हैं, वो काम है, जिसकी वजह से पुरुष अपने पद से गिरता है या स्त्री भी अपने पद से गिरती है, और वह काम, इच्छाएं, काम वासना। तो जिस प्रकार का एनवायरमेंट धीरे धीरे समाज का बन रहा है, तो प्रभात जी कहते हैं ये सेक्स सेंटर्ड ही है, हर चीज केवल काम वासना के ही इर्द गिर्द घूम रही है। और जिस प्रकार अग्नि में ईंधन डालने से, फ्यूल डालने से उसको बुझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार काम की इच्छा की पूर्ति करना, अधिक से अधिक करने का प्रयास करना, यह उसकी, उससे शांति प्राप्त नहीं होगी। ये तो केवल वैराग्य के द्वारा, ये तो केवल भक्ति योग के ही द्वारा इस पर काबू पाया जा सकता है। समाज में हम देखते हैं हर जगह आज हमारे परिवार, हमारे घरों में जो कली पुराण रोज आता है, हम पढ़ते हैं उसको, उस हर जगह सुबह से लेकर शाम तक हम देख सकते हैं उसके अंदर क्या है, केवल गंदी खबरें, है ना, यहां ये हो गया, उसने ये कर दिया, लोग परेशान हो जाते कि हो क्या रहा समाज में। किसी ने हमें बताया कि अभी अचानक एक व्यक्ति अपने कमरे में सो रहा था और अचानक बेड पे सो रहा था और एक सिंक होल हो गया। क्या होता है जी, वो कहते हैं वो जमीन धस गई, तो कमरे के अंदर उन्होंने का फोटो खींच के दिखाया हुआ था कि एक 10x10 फीट का खड्डा हो गया, वो बेड समेत ही व्यक्ति नीचे चला गया और मर गया वो। मैंने कहा ये खबर तो बड़ी खतरनाक है। कई बार लोग सोचते हैं मैं बचा रहूं, मेरे को कोई नहीं मार सकता, मैं कमरे में रहूंगा, मैं ये रहूंगा, लेकिन जिसकी आनी है वो कमरे में लेटे लेटे बेड समेत ही जमीन में चला गया, बताओ। और एक बार और भी सुना था, किसी ने बताया था कि कोई छोटा बच्चा कहीं खड्डे खुड्डे में घुस गया था, कुछ दिन तक पड़ा रहा, वो खड्डे से निकला है बाहर। और किसी को अगर बचाना तो भगवान कहीं से भी बचा लेते हैं, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। तो ये बड़े ही उथल पुथल वाला संसार है, और इस संसार में, समाज में हर समय कुछ ना कुछ घटित हो रहा है, लेकिन हम लोगों की यहां की जो हैपनिंग्स हो रही है ना, जो मनोरंजन हो रहा है जो यहां पर इन सब चीजों से, उससे बचना है। कारण कि यहां पर कुछ ना कुछ हर समय होता रहेगा, और इस संसार में अगर किसी व्यक्ति का यहां पर हो रही चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है तो बाहर नहीं निकल पाएगा। केवल जिन लोगों का भगवान से आकर्षण है, जो जिज्ञासु या ज्ञानी लोग हैं या जो भक्ति लोग हैं, वही केवल भगवान से आकर्षित होकर इस संसार से बाहर निकल सकते हैं। और हमारे ये जो न्यूज़पेपर भी कहते हैं 5x6x6 पेज के आते हैं, ज्यादा हो गया 30 पेज, और कितने प्रकार के न्यूज़पेपर होंगे, 30 प्रकार के होंगे, ठीक है, और इतने सारे न्यूज चैनल भी है सुना आजकल, तो पूरे विश्व की खबरें उसमें। लेकिन ज्यादातर क्योंकि समाज में संख्या है तामसिक लोगों की और राजसिक लोगों की, तो इसलिए उन्हीं की ज्यादातर खबरें आती हैं, और इसलिए वो क्योंकि अपने काम को कंट्रोल नहीं कर पाते तो कहने का कुछ गलत कर रहे हैं, या किसी का छीन रहे हैं, या कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। चाणक्य पंडित जी कहते हैं पर दरवेश लोष्टवत, दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखिए, ठीक है ना, लेकिन वो दूसरे के धन को सोने की मिट्टी के समान देते हैं। ये तो मेरा है सर, है ना, मातृवत परदारेषु, और दूसरे की स्त्री को कैसे देखिए, माता के रूप में। इसलिए वैष्णव कल्चर में हम सब लोग हर स्त्री को, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, माता के रूप में देखते हैं, या माता कहते हैं। हो सकता है स्त्रियों को बेकार लगता हो जब लोग नए आते हैं, माता, या कुछ लोग तो इसलिए नहीं ज्वाइन करते हैं, तो माता बोलते, मैं तो नहीं आऊंगी। सेंटेंस बोलते अपनी उम्र तो देखो पहले, है ना। कहने का क्या मतलब है कि हमारे इस कल्चर में, वैष्णव कल्चर में, इसकी हाइट देखिए कि हर स्त्री को माता के रूप में देखने की बात कही गई, दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखने की बात कही गई, है ना। ईशावास्यम इदम सर्व, हर चीज जो है भगवान की है, और हमने हमारे कोटे में जितना लिखा है उतना इस्तेमाल करो। क्यों नहीं व्यक्ति सुखी जी सकता है संसार में, शांत जी सकता है, सब जी सकते हैं, हर तरह के हमारे पास सूत्र हैं सुखी जीने की, लेकिन बस देरी है उसको खोलने की और अपनाने की, या ऐसे लोगों के बीच में रहने की जो ऑलरेडी इसको फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत आसान है जी। आप रहकर देखिए ऐसे लोगों के बीच में जो सुबह से लेकर शाम तक प्लानिंग करते हैं, इधर लगा उधर लगा, इधर उठा, ये बेच, ये कर वो कर, है ना, उसके बाद नाना प्रकार की जो घर से बाहर निकलते ही इंद्र तृप्ति के विषयों की बाढ़ आ गई, मतलब बड़े इस रूम में क्या है, इस रूम में ये होता है, ये इस रूम से ये बना, ये कैसीनो है, ये हुक्का पार्लर है, ये है, ये नाना प्रकार की चीजें, व्यक्ति इस प्रकार उसमें फंस जाता है, तो रजोगुण में आने के बाद फिर व्यक्ति उसी का हो जाता है, बहुत मुश्किल है वहां से निकलना। लेकिन श्री प्रभुपाद जी की कृपा से इस दावानल जैसे संसार में कुछ ऐसे संस्थान बनाए गए जहां से इस दावानल को शांत किया जा सके, जहां पर लोग राहत ले सके। एक बार हमें याद है कि हम लोग किसी तीर्थ स्थान पर गए थे और दोपहर का समय था और पूरा रास्ता जो है जो उस रास्ते के समान लग रहा था जो रास्ता वहां जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते। मतलब पैर बहुत जल रहे थे मतलब, और पूरे रास्ते में कहीं कहीं दूर दूर तक कोई वृक्ष नहीं था, कोई शेड नहीं था, और नंगे पैर गलती से सुबह तो चले गए थे बट जब दोपहर हुई तो बहुत जो है भगवान का नाम स्वतः ही निकल रहा था मुंह से। वो बड़े दर्द से निकल रहा था, उसके साथ हेल्पिंग वर्क भी थी आई हुई की, तो कहीं कोई वृक्ष, अच्छा ऐसी गर्मी में तो वृक्ष में पत्ते भी नहीं रहते, तो बिल्कुल गंजे वृक्ष जिनकी टहनियों की जो है छाया जमीन पर पड़ रही थी। वो एक लकीर सी जा रही थी, उस पर पैर क्या रखेगा आदमी। लेकिन फिर भी जो कुछ थोड़े बहुत ऐसे वृक्ष थे जिसमें कुछ पत्ते थे, एक आधा पत्ता बड़ा या था, तो उस पे व्यक्ति दोनों पंजे लगा के ऐसे खड़ा हो गया। ऐसी हमने देखी है इसलिए बोल रहे हैं, देखिए क्या मैं भी था उसमें, मैं ही था। तो उसी तरह ये संसार दावानल के समान है, हर जगह हम लोगों को कंटेमिनेट करने के लिए, हमारी चेतना को दूषित करने के लिए जो है दूषण की अग्नि हर जगह है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय श्रीकृष्ण भावनामृत मंदिर वो वृक्ष हैं जो अपनी छाया दूसरों को देते हैं ताकि वो वहां पर आके क्या कर सके, संतोष प्राप्त कर सके, आध्यात्मिक जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर सके, अपने जीवन को सार्थक कर सके। तो ये प्रभुपाद जी की बहुत विशेष कृपा है कि आज पूरे विश्व भर में जहां पर हर जगह जहां दृष्टि डालो केवल दूषीकरण, जिस बिल बोर्ड पर महाराज ने बोला ना उस दिन कि लगता है, क्या बोला था कि अभी तो जैसे लगता कानून बन गया है कि बिना नग्न, अर्धनग्न, पूर्ण नग्न, विद कपड़े स्त्री का जब तक पोस्टर ना हो किसी प्रोडक्ट के साथ एडवर्टीजमेंट ने, वो बिकेगा नहीं। ये ऐसा लगता कि नियम बन गया, जैसे डालना ही डालना है, चाहे तुम सीमेंट बेच रहे हो। हाँ हम एक बार जा रहे थे क्योंकि हम लोग मंदिर के लिए सीमेंट चाहिए था, हमें ठीक है, वो पता चला वो सीमेंट में भी एक अर्धनग्न स्त्री खड़ी है और उसमें लिखा है पता नहीं क्या, शेव करनी है आदमी ने, ब्लेड चाहिए उसको, उसमें स्त्री का वो LIC उसमें तो चाहिए चाहिए। उसके तो प्रभुराज ही चर्चा कर रहे हैं। है ना, मतलब आप माचिस लीजिए उसमें, मतलब जो भी चीज आप खरीदिए हर चीज में क्या चाहिए इस प्रकार का, मतलब किस प्रकार, देखिए जिन लोगों को लगता है हम स्वतंत्र हो रहे हैं, हम कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, उस कंधे से कंधा मिलाने में पुरुष भी साथ नहीं खड़ा होता, स्त्री ही का पोस्टर दिख रहा होता है। तो इतनी दुर्गति हो रही है समाज की और लोगों को लग रहा है कि ये आधुनिकता है, ये मॉडर्नाइजेशन है, हम लोग एडवांस कर रहे हैं। एडवांसमेंट इसे नहीं कहते, इसे उन्नति नहीं कहते, इसे अवनति कहते हैं, ये प्रगति नहीं है, ये तो ह्रास है समाज में चेतना का। प्रगति का मतलब होता है पैसों में, धन में, बिल्डिंग में, कमरे में, मकान में, कपड़ों में, जूतों में बढ़ोतरी नहीं, ये एडवांसमेंट नहीं है। एडवांसमेंट का मतलब होता है चेतना के एडवांसमेंट, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटीज के एडवांसमेंट, इसे एडवांसमेंट कहते हैं, रियल एडवांसमेंट। तो भारत पहले बहुत एडवांस था, अभी जिन देशों को हम एडवांस बोलते हैं वो टेक्नोलॉजी में एडवांस हो सकता है, जिस नाना प्रकार की टेक्नोलॉजी से हम अपनी कॉन्शियसनेस को पोल्यूट करते हैं उसमें एडवांस हो सकता है, लेकिन क्वालिटीज में देखें, धार्मिक चीज में देखें, वो एडवांस नहीं। इसलिए इसको प्रभुपाद जी कहते थे एनिमल सिविलाइजेशन, पशुओं की तरह जी रहे हैं, पशुओं की तरह चेतना है, चाहे हो सकता है कोई व्यक्ति कहां रह रहा हो, कैसे भी रह रहा हो, लेकिन पशुवत ही रह रहे हैं। इसलिए इस पशुओं के समाज में मनुष्यों की आवश्यकता है और इन मनुष्यों को, उन पशुओं को आदमी बनाना है। ये काम करना है। तो इसलिए ये इंस्टीट्यूशंस खोले गए, इसलिए प्रभुपाद जी ने ये सब बनाया ताकि हर व्यक्ति को हम लोग उस स्तर पर ला सकें जहां से कि वो इस प्रकार के जो भेद हैं उनको, इस समाज की जो डुअलिटीज हैं उससे कोई इसको फर्क ना पड़े, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमें चाहिए कि हम लोग देहात्म बुद्धि से ऊपर उठें, और जितना जल्दी देहात्म बुद्धि से ऊपर उठेंगे तो उतना जल्दी इन स्पिरिचुअल टॉपिक्स को समझ सकते हैं। और देहात्म बुद्धि से उठने का सबसे सरल तरीका चैतन्य महाप्रभु ने बताया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप जितनों ने भी किया सब पहले तो इस प्रकार की चेतना से ऊपर उठे, देहात्म चेतना से, और उसके बाद वो थोड़ा सा ऊपर उठकर भगवान के धाम चले गए। तो हमें भी चाहिए कि हम सब लोग इस ग्रंथ को ठीक ढंग से पढ़ें और नियमित रूप से भागवतम श्रवण करें, हरि नाम का आश्रय प्राप्त करें, ताकि हम लोग भी जल्द से जल्द उस चेतना को प्राप्त कर सकें और मटीरियल कंटैमिनेशन से, दूषीकरण से अपने को बचा सकें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।